ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय चालू। तो आज 14 जुलाई के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो अभी 14 जुलाई 2015 यानी अधिक मास के अभी 2 दिन बाकी हैं। तो बहुत पवित्र अधिक मास अभी आरंभ होगा 17 जून को, वो 16 जून जुलाई तक चलेगा। बहुत सुंदर महीना था, बहुत सारा उत्सव, बहुत सारा यात्रा, कथा भगवान की, व्रत करना, ये सब इसमें मुमकिन था। हजारों करोड़ों गुना लाभ उसका लोगों को मिला। जगह जगह पर हमने देखा कि आदमी औरत नदी में स्नान कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कुछ उपवास रख रहे हैं, और बहुत सारे लोग देखा मैंने, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई मायापुर जा रहा है, कोई जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, कोई नासिक जा रहा है। सब जो जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लाभ मिले भगवान का। अभी कल से एक और महत्वपूर्ण उत्सव शुरू हुआ, किसी को पता है? कुंभ मेला। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। इस बार एक बहुत अनोखी बात और भी हुई। जिस दिन अधिक मास शुरू हुआ उसके आसपास रमजान शुरू हुआ, और रमजान 2 दिन के पहले रमजान समाप्त हो गया। जब हमारा उपवास, हमारा अधिक मास चल रहा था, उनका भी उपवास और भगवान का पूजन चल रहा था। रमजान के दिन में दिन के 4 नमाज होते हैं ना, उसके बदले में रात का 5वां भी होता है, बीच रात में होता है। और रात भर में जब मैं सऊदी अरब में था तब मैंने उसका अनुभव किया है कि बीच रात में 1:30 बजे और एक स्पेशल नमाज होता है और बहुत लंबा होता है, रात भर जगना होता है उसके लिए। तो ये सब जो विधि विधान है भगवान का, नाम का जप करना है, उपवास करना है, हाँ, उनको पूजन करना है, पवित्र स्थान में जाना है, ये सब धर्म में है, कॉमन है। इसलिए सब धर्म एक है क्योंकि सब धर्म में कॉमन विधि बताया गया, अलग अलग टाइम दिखाया है, लेकिन उपवास करने का, नाम का जप करना है, प्रार्थना करना है, ये सब में दिया गया है। तो कल के दिन में जो गुरु है ना, गुरु ग्रह, कितने प्रकार के ग्रह है, चंद्र है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ऐसे कई ग्रह होते हैं। उसमें जो गुरु है वो सबसे हमारी ग्रह माला में सबसे बड़ा गुरु, बड़ा ग्रह है वो। वो पृथ्वी से कुछ 400 गुना वजन में ज़्यादा है और कुछ 150 गुना साइज में ज़्यादा है, और वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो गुरु ग्रह के ऊपर हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन सब निर्भर रहता है उसके ऊपर। तो वो गुरु ग्रह जो है वो 12 राशि होती है, 12 राशियाँ। हाँ, राशि मतलब एक समुदाय होता है, जो समुदाय तारकाओं का होता है, स्टार्स का। वो एक जगह पर वो सिंह के रूप में होता है, एक जगह मछली के रूप में होता है, आकार उसका ऐसे। दूर से देखेंगे आप तो बहुत स्टार देखेंगे, लेकिन स्टार वो ऐसे मछली के रूप में देखेंगे आप, तो मीन राशि हो गया, फिर सिंह राशि हो गया, फिर कर्क राशि हो गया, फिर मिथुन राशि हो गया, मेष राशि हो गया, इस तरह से 12 राशि है। उसमें सिंह राशि है, वो सब तारका लोग जो है वो सिंह की तरह दिखते हैं दूर से देखेंगे तो। तो जो गुरु है वो हर एक राशि में प्रवेश करता है, सूर्य भी हर एक राशि में प्रवेश करता है, उसको संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहते हैं, लेकिन हर महीने में एक संक्रांति होती है, सूर्य वो छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है। वैसे गुरु जो ग्रह है वो हर एक राशि में प्रवेश करता है उसको एक राशि में से गुजरने के लिए एक साल लगता है। तो अभी कल गुरु गुरु ग्रह ने सिंह राशि में प्रवेश किया, अब वो एक साल तक उसको क्रॉस करते करते एक साल जाएगा, जब पूरा छोड़ देगा उसको तो एक साल खत्म हो जाएगा, और तब वो दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। तो वो एक जो साल है वो 12 साल में एक बार आता है, बराबर ना, 12 राशि में घूमेंगे एक एक साल, तो नेक्स्ट नंबर कभी आएगा 12 साल के बाद में आएगा। तो शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उसको सिंहस्थ कुंभ मेला कहते हैं। उस समय कई मुहूर्त निकलते हैं उस साल में, जिस दिन अमृत जो गिरा था उसके अंदर वो ऊपर आता है। इसकी छोटी लंबी कहानी है बहुत, लेकिन आपको छोटे रूप में बताते हैं कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था भगवान के आदेश के अनुसार। उसमें से पहले विष निकला था, वो शिवजी ने पी लिया था, फिर उसके बाद में वापस मंथन शुरू रखा तो 14 रत्न निकले उसमें से, 14 रत्न, एक घोड़ा निकला, उच्च श्रवा, लक्ष्मी देवी निकली उसमें से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली, गाय निकली उसमें से, कामधेनु, ऐसे 14 चीज़ें निकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्वयं विष्णु के अवतार धन्वंतरी जो है वो अमृत का कुंभ निकल उसमें बाहर निकले। अभी देवताओं का और राक्षसों का ऐसा वादा हुआ था कि हम लोग दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, फिर अमृत निकलेगा, फिर हम बांट के पिएंगे, दोनों को लाभ होगा। वे देवताएं बहुत कमजोर हो चुके थे, बार बार वो राक्षस के द्वारा हार के बहुत कमजोर हो गए थे, और ब्राह्मणों की सेवा करके राक्षस लोग बहुत बलवान हो गए थे, इसलिए उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवताओं ने दुर्वासा मुनि के द्वारा महाविष्णु की माला का अपमान किया था, इसलिए वो कमजोर हो गए थे, और बलि महाराज ने देवताओं के खिलाफ युद्ध किया तो ब्राह्मण की सेवा करने की वजह से बलवान हो गए थे, तो देवताओं को परास्त कर दिया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अभी आप झगड़ा मत करो, आपका साइड जो है ना वो कमजोर हो गया, अभी आप तह करो, तह उनसे सुलह करो और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, और समुद्र मंथन में अमृत निकलने तक मेहनत करते रहो बस। तो मेहनत किया तो विष आया, शिव जी ने विष पिया, फिर 14 रत्न आए, वो भी एक एक करके बांट लिया, वो बलि महाराज ने वो घोड़ा ले लिया, फिर ऋषियों ने कामधेनु गाय ले ली, लक्ष्मी की शादी विष्णु से हो गई, लक्ष्मी आते ही गालमाला लेके आई तो सीधा विष्णु के गले में डाल दिया तो शादी हो गई, ऐसा सब बहुत सारा चीज हो गया उसमें। एंड में कलश निकला धन्वंतरी के रूप में, हमारे आयुर्वेद के अंदर उसकी मूर्ति ऐसी ऐसे मतलब कलश लेके, वो आयुर्वेद के क्या कहते हैं उसको, विष्णु का अवतार है आयुर्वेद। तो जैसे ही वो कलश आया ना, राक्षस लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था उधर ही तोड़ दिया, उसको छीन लिया अपने पास, अभी देवताओं को नहीं मिलने वाला है। अभी इतना मेहनत किया, इतने समय इतने साल तक समुद्र का मंथन किया, उसका फल भी निकला, लेकिन फल उन्होंने बल से ले लिया, ये कमजोर रह गए और रोने लगे, क्या करेंगे, भगवान को पुकारने लगे, अभी आपने कहा था वैसे किया, अभी अमृत भी गया, सब कुछ खत्म, क्या करेंगे अभी। तो जो अमृत जब ही छीन लिया ना, तो उसके बाद में उसके पहले गरुड़ जी ने उसको लिया था देवताओं के लिए, और राक्षस पीछे लगे उनके, तो वो अमृत का कलश लेके वो भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो वो जगह जगह जहां गए, जहां रुके कुछ समय के लिए, फिर हमला हुआ, फिर वहां से भी भागे, तो वो 5 जगह गए। पहले वृंदावन में गए जमुना किनारे, वहां पर वो कलश रखा और कुछ बूंद उस कदम्ब के पेट पे डाल दिया, ये जानते हुए कि आगे जाकर भगवान अवतार लेंगे तो कालिया को मर्दन करने के लिए इस पेट पर चढ़ेंगे, वो कालिया के विष से सब पेट मर जाएंगे लेकिन ये पेट जिंदा रहना चाहिए, इसलिए उस पर अमृत डाल दिया उन्होंने। फिर वहां राक्षस आए तो भागे उसको उठाकर, फिर हरिद्वार में रुके तो हरिद्वार में कुछ बूंदे गिरी अलग तिथि पर, फिर वहां से राक्षस वहां से भागे, फिर उज्जैन में गए, उज्जैन में उसकी कुछ बूंद गिरे, फिर प्रयाग में गए त्रिवेणी संगम में, वहां पर कुछ बूंद गिरी, और फिर नासिक में आए तो वहां पर कुछ बूंद गिरे। जब नासिक में आए तो गुरु राशि गुरु ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुका था, तो वो पर्व हो गया, मतलब पर्व का मतलब क्या, बहुत पवित्र काल हो गया वो, ऐसा भी और वैसा भी दोनों तरफ से पवित्र हो गया। तो इसलिए जब गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तो एक साल को उसको सिंहस्थ कुंभ मेला पर्व कहते हैं, और फिर उसमें कुछ मुहूर्त है उसके अंदर, उसको कहते हैं शाही स्नान का मुहूर्त। क्यों? क्योंकि उस मुहूर्त के समय जो अमृत गिरा था वो ऊपर आता है, और जो भी स्नान करता है उसके समय उसको आरोग्य, धन संपदा और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए कदिक पर 1 करोड़ लोग वहाँ पहुँचते हैं वो अलग अलग दिन पे, और जितने भारत भर के जितने भी महामंडलेश्वर आचार्य हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं। उनको वहाँ पर टाइमिंग होता है कि ये दिन पे इनका आश्रम का स्नान, तो वहाँ पर लोग आते हैं स्नान करते हैं। बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है, बहुत बड़ा इंतज़ाम। दुनिया भर में ऐसे लिखा गया है कि एक दिन में, किसी भी एक दिन में बिना बुलाए एक जगह पर ये रोग इकट्ठा होने का रिकॉर्ड है, और वो है कुंभ मेला का। दुनिया भर में कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो उसमें एक दिन में बिना बुलाए लोग इकट्ठा होते हैं इतने नंबर में। आज तक का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, कोई भी धर्म इस कुंभ मेले के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। और जब होता ना इलाहाबाद का माघ मेला, माघ महीने में 1 महीना मेला लगता है, रोज स्नान करते लोग माघ महीने में ठंड में, तो माघ महीने में 1 महीने में मिलकर 3 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं 1 महीना भर में। ऐसा ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो कुंभ मेला जो है उसमें भारत भर के जितने संत लोग हैं वो सब लोग आते हैं उधर, अपना तंबू लगाते हैं, और कुछ लोग साल भर रहते हैं, कुछ लोग 3 महीना रहते हैं, और पूरा टाइम प्रवचन, कथा, भागवतम, कीर्तन, जो भी उत्सव, यज्ञ, हवन, ध्यान, भगवान के भक्ति में जो भी करना होता है वो अपने अपने आश्रम में अपने तरीके से करते रहते हैं। वो कैसा होता है ना, वो कैसा होता है जो मॉल अपना सोमवार का मार्केट कैसा होता है, उसके अंदर कपड़ा भी है, उसके चमचा भी है, उसके अंदर वाटी भी है, उसके अंदर साड़ी भी है, उसके जूता भी है, उसके अंदर कंघी भी है, खिलौना भी है, क्या नहीं है, सब कुछ है उसके अंदर। मतलब वो एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर जितने भी व्यापारी है, जो भी उनको बेचना है, पैंट शर्ट पीस साड़ी तैयार रेडीमेड कुर्ता क्या चाहिए आपको, हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी मंडे मार्केट में। तो जितने भी व्यापारी है उस धंधा लेकर उधर आ जाते हैं, और सब प्रकार के लोग वहाँ बैठते हैं, लंबा लंबा तक बैठते हैं। वैसे जितने प्रकार के भगवान के संबंध में, भक्ति के, योग के, ज्ञान के, कर्मकांड के जितने भी संप्रदाय हैं वो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो कहने के कहते हैं कि देखने के लिए बहुत आनंद आता है उसके अंदर, अरे ये आश्रम के ये गुरु, वो आश्रम के वो गुरु, उधर के संप्रदाय के ये ध्यान वाले, ये योग वाले, ये कर्मकांड वाले, ये योग सिद्धि योग वाले, ये हिमालय वाले, ये नागा बाबा, ऐसे प्रकार प्रकार के लोग जो हैं आपको वहाँ देखने मिलेंगे। नहीं तो आपको अलग समय पे जाना पड़ेगा उनको, हिमालय में ये दिन मिलेंगे आपको, हरिद्वार में वो मिलेंगे, उधर इलाहाबाद में वो मिलेंगे, ऐसे आपको अलग मिलेगा। लेकिन वो एक समय ऐसा होता है कि आप अगर एक दिन घूमेंगे तो आपको सारे लोग मिलेंगे वहाँ पर, हर प्रकार के, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई धुनी लगा रहा है, कोई त्रिशूल लेके बैठा है, कोई ऐसे बिना कपड़े के बैठा है, कोई कुछ सर्व कर रहा है, साधना कर रहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग, कुछ लोग केवल देखने जाते हैं कि क्या क्या होता है। तो कुंभ मेला 1 साल चलता है, और उसमें एक विशेष बात होती है जो सब लोग बहुत गौर से देखते हैं, वो है नागा बाबा। नागा बाबा मतलब वो हिमालय में रहते हैं और वो नंगे होते हैं, और उनका बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा। उसमें से आधे लोग आपको मालूम है कैसे मिलेंगे, ऐसा यहाँ से लेकर त्रिशूल निकाला हुआ है, और त्रिशूल ऐसा है यहाँ से घुसा के निकाल के, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं ऐसी त्रिशूल की, यहाँ पर दंडी है, और पूरा समय ऐसे रहते हो। किसी के पेट में से कुछ तलवार निकाल के यहाँ से निकाला हुआ है और ऐसे चलते रहते हैं, किसी के कान में कुछ चाकू लटका हुआ है, ऐसा कुछ अजीब चीज़ें करते रहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से कुछ चीज़ निकाल के ऐसे रहते हैं और ऐसे रहते हैं, आपको जाके देखना चाहिए। और बहुत ऐसे लंबे बाल, राख लगाए हुए, पूरे नंगे ऐसे रहते वो। उनका विशेषता ये है कि वो लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो लोग हिमालय में रहते हैं। हमारे गुरु जी हैं ना राधानाथ स्वामी, उनके किताब में भी इनका प्रसंग है, जो उनके आश्रम में गए थे वो उनको नागा बाबा बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो नागा बाबा बनो ऐसे उनको जोर से कह रहे थे। तो राजा उनका जो है नागा गुरु है वो बैठा था उधर सिंहासन पे। तो वो लोग बिना कपड़े पहने घूमते रहते हैं, और वो लोग कभी भी आपको वहाँ से निकले हुए हैं, रोड से आ रहे हैं चल के, या ट्रेन में बैठे हुए हैं, या बस में बैठे हुए हैं, या बैलगाड़ी से आ रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। आपको अचानक एक दिन नासिक में मिलेंगे वो, और नासिक में उतना समय रहेंगे जितना उनको रहना है, 3 महीना, एक साल, जो भी है। वापस जाते वक्त भी ऐसा नहीं कि वो ट्रेन पकड़ लिया उन्होंने, या बस पकड़ लिया, या बोट पकड़ लिया, कोई चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अदृश्य हो जाते हैं। और उनका ऐसा तरीका है कि वो इतने पावरफुल रहते हैं कि हिमालय में गंगा नदी में उतरते हैं वो, और गंगा नदी में अदृश्य हो जाते हैं, और सीधे गोदावरी में प्रकट हो जाते हैं, और वहाँ से बाहर निकलते हैं। इलाहाबाद में हुआ तो त्रिवेणी में बाहर निकलते हैं, वहाँ पर आश्रम में चले जाते हैं। उज्जैन में हुआ तो वहाँ की नदी के बाहर निकलते हैं, और हरिद्वार में हुआ तो वहाँ के गंगा के बाहर निकलते हैं, और वहाँ मिलेंगे आपको, आप उनको देख सकते हैं, उनका जुलूस निकलता है, अलग अलग प्रकार के लोग कहाँ कहाँ क्या क्या औजार घुसा के चलते रहते हैं, ये उसकी विशेषता है। और उनका भी एक स्नान का समय रहता है, वो जाते हैं स्नान करने के लिए उस समय, वो जहाँ पर मेन जगह है स्पॉट वहाँ पर। तो नासिक के कुंभ मेला का यह महत्व ऐसा है कि शंकर भगवान एक साल वहाँ पर गोदावरी किनारे में निवास करते हैं, और शंकर भगवान का संग प्राप्त करने के लिए जितने भी देवता हैं, वो सारे देवता और जितने भी ऋषि हैं, सप्त ऋषि और ऋषियाँ, वो सब ऋषि भी वहाँ पर प्रकट होते हैं, इसको दिखाई नहीं पड़ते हैं, बड़े दिव्य लोग हैं ना सब वो, लेकिन वो उस गोदावरी के किनारे में निवास करते हैं, इसलिए वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर में जो भगवान शिव जी का स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, वो स्वयं वहाँ निवास करते हैं व्यक्ति रूप में, सारे देवताओं के और ऋषियों के साथ। इसलिए उस इस साल में कभी ना कभी एक बार जाकर गोदावरी का स्नान करना, वहाँ पर बैठना, दर्शन करना, प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। हम भी कभी जाएंगे बीच में, समय मिलेगा तो, क्योंकि अभी तो बहुत भीड़, भयंकर भीड़ होती है, इतना तो भीड़ है कि चलने को जगह नहीं है। जो आम जनता, हम अभी जाके आए ना नासिक में, तो ये तो खुली जगह है गोदावरी की, एकदम इंच और इंच पैक हो जाएगा, बैरिकेडिंग, पुलिस वुलिस सब रहेगा, और बड़े बड़े लोग रहेंगे उसके अंदर। एक साल तक ये पर्व चलेगा। तो आज के समय का महत्व ये भी है कि सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू हो गया है, अधिक मास भी चल रहा है, हाँ, और 4 दिन में क्या होने वाला है, शनिवार को हाँ रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान की, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है वो। पूरे जगत में ऐसे एक ही भगवान है जो अपना मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं, और रथ में बैठकर ओरिजिनल मूर्ति जो है वो यात्रा करती है। बाकी हमारे साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी जब जाएंगे, सब जगह भगवान बाहर आते हैं, लेकिन मेन भगवान बाहर नहीं आते हैं, उनकी उत्सव मूर्ति होती है छोटी सी, उनकी प्रतिनिधि होती है वो रूप मूर्ति, वो अभिषेक वगैरह स्वीकार करती है सभी बड़ी मूर्तियों के प्रतिनिधि के रूप में, भोग भी उनको लगता है, अभिषेक भी उनका होता है, रथ में भी उनको घुमाते हैं रोज। अच्छा, हमारे मंदिर में, गांव में सब जगह रोज शाम को रथ यात्रा होती है, रोज शाम को होती है, तो रोज शाम को पालकी में वो भगवान बाहर आते हैं उत्सव मूर्ति, लेकिन किसी भी मंदिर में मूल मूर्ति बाहर नहीं आती है। ये जगन्नाथ जी के भगवान की जो मूर्ति है जगन्नाथपुरी में, वैसे एक ही भगवान है पूरे विश्व में जो साल में एक बार स्वयं बाहर निकलते हैं, और रथ में बैठते हैं और दूसरे मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर 9 दिन रहते हैं, वहाँ पर आनंद लेते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। और विशेष रूप से क्या बात है, जिस दिन ये 9 दिन रहकर लौट के आते हैं, उनकी वापसी की रथ यात्रा होती है, वो दिन आषाढ़ एकादशी होती है पंढरपुर में, और उसका भी महत्व है। एक महीना कितना महत्वपूर्ण है, अभी चतुर्मास शुरू हो जाएगा 17 तारीख से, 4 महीने में कितने सारे उत्सव होंगे। तो पहला उत्सव जो है रथ यात्रा का है, दूसरा उत्सव है पंढरपुर के एकादशी का है, अभी साथ साथ में सिंहस्थ मेला वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, साथ साथ में पुणे आलंदी ऐसे जगह से तुकाराम महाराज ज्ञानदेव की पालकियाँ निकली हुई है, रस्ते में रोज नाचते नाचते भगवान का नाम पुकारते हुए चलते जा रहे हैं, नंगे पैर बारिश में धूप में चलते जा रहे हैं। हमारा कैंप भी चलेगा उसके साथ में, नामाचा गजर, मतलब भगवान का नाम गूंज रहा है सब जगह पर, राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल पांडुरंग, सब जगह लोग गाते गाते जा रहे हैं भगवान का नाम लेके, परवाह नहीं कर रहे हैं भूख लग रही है कि नहीं, सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, भगवान की दया से रास्ते में सब मिल जाता है उनको, पानी मिलता है, शरबत मिलता है, भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है, सोने की जगह मिलती है, ब्लैंक, एवरीथिंग भगवान प्रोवाइड करते हैं उनको। कई लोग आते हैं सेवा करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ से मेडिकल सर्विस मिलता है उनको, और 10-15-20 दिन तक चलते 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 फिर आखिर में वो एकादशी के पहले दिन दशमी को वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी मैं आपको संक्षेप में रथ यात्रा का महत्व बताऊँगा और पंडरपुर की एकादशी का महत्व बताऊँगा। तो रथ यात्रा 18 तारीख को है, उसका महत्व ये है कि भगवान सब लोगों का उद्धार करने के लिए मंदिर छोड़कर दर्शन देते हैं। जगन्नाथपुरी का नियम है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में केवल हिंदू ही आ सकता है और कोई प्रकार का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भगवान सबको दर्शन देने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख जो भी कुछ है, बाहर विदेशी है, सबको दर्शन देने के लिए एक बार बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद सब दर्शन करते हैं उनका। पहले ऐसा था कि बाहर आने के बाद में कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का लोग हो, जाके गले मिलते थे भगवान को, पूरा आलिंगन देते थे उनको। लास्ट ईयर वो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। अभी कोर्ट केस चल रहे हैं कि होना चाहिए। तो ऐसे एक ही भगवान है वो, जो अब तक लोगों को गले मिलते थे, बाकी सबको दूर से प्रणाम करना पड़ता है। और दूसरे भगवान है पंडरपुर के, तो गले नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि पहले वो भी गले मिलते थे, लेकिन बाद में बंद हो गया वो। अभी चरणों का स्पर्श बाकी है, लेकिन साक्षात भगवान का, मूर्ति का, चरणों का स्पर्श जो है वो पंडरपुर के विठल के बिना किसी का नहीं होता है। ये उसका महात्म्य है। तो 9 दिन वहां रहते हैं, तो उसका रहस्य ये है कि वो जगन्नाथपुरी में द्वारका के भाव में रहते हैं, ऐश्वर्य भाव में, लेकिन उनको वृंदावन की याद आती रहती है। इस साल में एक बार रथ में बैठकर वृंदावन जाते हैं, तो गुप्त वृंदावन कहते हैं। जो गुंडीचा मंदिर है वो रानी के नाम पे बना है, लेकिन एक्चुअली वो गुप्त वृंदावन के भाव में है। और वहां पर एक अलग जाति होती है, वही लोग भगवान की सेवा करते हैं। और वो कहा गया है कि वो लोग जो हैं वो भगवान की वृंदावन के गोपियों के भाव में, ब्रजवासियों को भाव में सेवा करते हैं। तो भगवान अपना जो वृंदावन का जो आस है उनको हृदय में, उसको पूरी कर लेते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनके हाथ का भोजन पाते हैं। तो जगन्नाथपुरी का जो भोजन है वो विशेष माना गया है, बहुत स्पेशल प्रसाद है वो, वर्ल्ड में कोई प्रसाद हम उसका तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें भी ये 9 दिन जो रहते हैं गुंडीचा मंदिर में, उसका प्रसाद उससे भी अधिक पावरफुल माना गया है। गुंडीचा का दर्शन, जब भगवान अपने प्रिय ब्रजवासियों के बीच में निवास कर रहे हैं, उनका दर्शन, और वहां पर रहते हुए पाते हुए जो प्रसाद पाते हैं उसका दर्शन और प्रसाद पाना, बहुत पावरफुल माना गया है। और वापसी में आते हैं तो उनका रोड पर ही सोने का श्रृंगार करते हैं, गोल्ड का, 1000 किलो का गहना है उनके पास, अलग अलग, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। और रोड पर रात को निवास करते हैं और रात भर उनका श्रृंगार करते हैं, और सुबह सुबह वो सोने के विष का दर्शन सबको होता है, और उसके बाद भगवान मंदिर में प्रवेश करते हैं। इतना भव्य चीज किसी का होता नहीं आज तक, इतना भव्य। और एक बार रथ में से सोना वेश हो गया, दर्शन हो गया, मंदिर चले गए, तो जो 3 रथ बने हुए हैं वो तोड़ देते हैं उसको, और जितनी लकड़ी पैदा होती है उतनी लकड़ी में जगन्नाथ के मंदिर में साल भर का जो भोजन है भगवान के लिए जो बनता है वो सब उस लकड़ी में बनता है, और साल भर बराबर पूर्ति है वो, ज़्यादा लोग आए, कम लोग आए, कुछ भी हो जाए, साल भर वही लकड़ी जो है पर्याप्त, एक जगह जमा करते हैं उसको। हमारे उड़पी में भी ऐसा ही है, एक बड़ा लकड़ी का ढेर बना के रखा है रथ के शेप में, लेकिन लकड़ियाँ घुसा के रखी है उसके अंदर, और वही सारी लकड़ियाँ जो है वो साल भर किचन में यूज की जाती है, लंबी लंबी लकड़ियाँ। और वो जो रथ की लकड़ी है हमारे इस्कॉन मंदिर की तरफ से गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं फसी की लकड़ी, फसी। तो फसी की लकड़ी जो है वो 600 लकड़ी का 600 पेड़ काटने के बाद में वो 3 रथ बनते हैं, और हर साल में 600 पेड़ पूरे बड़े हुए काटने को मिलने चाहिए, इतने रथ इतने पेड़ वहाँ लगा के रखें, हजारों लोग लगा के रखें। उसमें गणित ऐसा है कि उनमें से साल में 600 पेड़ काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस्कॉन 600 पेड़ काटते हैं और जगन्नाथपुरी के मंदिर भेज देते हैं, फिर अक्षय तृतीया के दिन उसका रथ का काम शुरू होता है, और जब रथ यात्रा समाप्त होती है तो वो सारी लकड़ियाँ किचन में यूज़ करते हैं। ऐसा बहुत सुंदर वातावरण है, और साल भर में भी जितना खाना बनता है, तो कभी ज़्यादा लोग आते हैं वीकेंड में, कभी उत्सव में, दिवाली में लोग बढ़ जाते हैं, कुछ भी हो जाए वहाँ पर जो खाना बनता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, सब लोगों का पेट भरता है उसके अंदर। कभी भी लोग ज्यादा हो गए, भूखे रह गए, प्रसाद खत्म हो गया, ऐसा कभी होता नहीं। जगन्नाथ जी की महिमा है वो। जगन्नाथ जी के धाम में अन्न क्षेत्र में जाएंगे आप तो आपको खिचड़ी प्रसाद कभी भी खत्म हो गया नहीं मिला ऐसा नहीं होगा, आप कभी भी जाओ मिलता रहेगा। ये उसकी लीला है जगन्नाथ की। और पंढरपुर की महिमा ऐसी है कि पंढरपुर के भगवान तो साल भर रहते हैं उधर, तो आषाढ़ी एकादशी में क्या होता है विशेष? तो ऐसे ही लिखा गया है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन वो गोपाल वेश धारण करते हैं और गाय चराते हैं, उस दिन वो भाव में रहते हैं। तो गोपाल कृष्ण का भाव का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन गोपाल वेश में, गोपाल भाव में आए हुए भगवान का दर्शन करने से फिर जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो एक दिन का दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, 24 से लेके 48 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं धूप में। अगर वो लैट्रिन जाने का भी चांस नहीं, बीच में सोने का भी चांस नहीं, चलते रहना पड़ता है। हजारों लोग लाइन में लगा रहते हैं। एक बिल्डिंग बना हुआ है हमारे जैसा, उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, खाली लाइन है लोगों की, ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे घुमाते हैं, फिर चढ़ाते हैं पहले, फिर उतार देते हैं उसमें से। वो बिल्डिंग चढ़ के उतरने में कुछ 15-20 घंटे का टाइम लगता है, ऐसा है। 10 लाख लोग आते हैं तो 1-2 लाख लोग ही प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्या करते हैं फिर? इतना चल के आए क्या फायदा उसका? तो लोग शिखर का दर्शन करते हैं, शिखर का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। फिर द्वादश, कुछ लोग द्वादशी रहते हैं, द्वादशी को देखते हैं, तो एकादशी लेकर पूर्णिमा तक वहां पर भीड़ रहती है भगवान का दर्शन करने के लिए। महाभिषेक होता है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं दोपहर 2 बजे सुबह, पति पत्नी के साथ में उनकी पूजा होती है, अभिषेक होता है भगवान का उस दिन। कारण यह है कि भगवान उस दिन गोपाल के भाव में आते हैं, गोपाल कृष्ण। और हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल की तरफ से कम 200 लोग जाते हैं निकल के, वॉलंटियर लोग और हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर नर्सेस मिलकर जाते हैं। 5 जगह पर कैंप लगाते हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर लोग लाइन में खड़े हैं, वो निकल सकते नहीं, कुछ भी हो गए तो, बीमार हो गए, चक्कर आ गए, तो उनको लाइन छोड़ते नहीं है वो, तो वहीं पर उनको इलाज करते हैं लाइन के अंदर ही। वो 5 जगह कैंप का इलाज का अरेंजमेंट करते हैं, और 6वां अरेंजमेंट जो है एक बिल्डिंग में करते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल खोल देते हैं 25 बेड का, लोगों को एडमिट करते हैं, उनको टाका लगाते हैं, उनका कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन कर लेते हैं, IV लगाते हैं, उनको डिस्चार्ज कर लेते हैं, 24 आवर सर्विस देते हैं, और 1 लाख लोगों को हर दिन खिचड़ी खिलाते हैं। एकादशी के दिन 1 लाख लोगों को साबूदाना खिचड़ी खिलाते हैं, फिर वापस द्वादशी को 1 लाख लोगों को खिलाते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्था एकत्र होकर वो सेवा करते रहते हैं, किताब भगवद्गीता देते हैं लोगों को। पूरे पंढरपुर में कीर्तन पार्टी घूमती रहती है हमारे, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए, प्रवचन होता है, कैंप होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो समय जो चल रहा है अभी, बहुत पवित्र समय है। पिछला 1 महीना भर के, अभी कल सिंहस्थ मेला शुरू हो गया, अभी अधिक मेला अभी भी चल रहा है, अधिक मास, फिर रथ यात्रा का समय है, फिर भगवान का गुंडीचा निवास है, तो भगवान वापस लौट के आएंगे, उसी दिन पंढरपुर की एकादशी है, ऐसे आगे चलता रहेगा उत्सव अभी। तो मैं आपको, हम लोग भी मायापुर से लौट के आए, तो मायापुर में माता जी आप भी थे, मायापुर में इसमें कितने लोग थे? एक माता जी शायद हाँ थी, और बाकी कोई नहीं थे, 2 और 3, इसमें से कोई है? कोई नहीं। बहुत सुंदर यात्रा रही मायापुर की। तो विशेष ये है कि मायापुर, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, ये सब जगह पर सब धाम हैं। मतलब मायापुर में जगन्नाथपुरी भी है, वृंदावन भी है, गोवर्धन भी है, सब कुछ है, जमुना है, एवरीथिंग इज देयर। और वृंदावन में भी जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, जगन्नाथ, सब कुछ है उधर, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गया है, त्रिवेणी संगम है, क्या नहीं है, सब कुछ है। सब तीर्थों ने सब जगह आश्रय लिया हुआ है, जितने सारे तीर्थ है वो सब तीनों जगह पर बसे हुए हैं, मायापुर में भी है, वृंदावन में भी है, जगन्नाथपुरी में भी है। तो मायापुर में जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए हैं, वृंदावन में जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। तो मैं आपको मायापुर में कैसे प्रकट हो उसकी कहानी बताता हूँ। उसकी कहानी यह है कि 7वीं सेंचुरी में एक भक्त था, जगदीश गांगुली, वो भगवान का बड़ा भक्त था। तो वो और उसके फ्रेंड्स मिलकर बंगाल से हर रथ यात्रा को चल के जगन्नाथपुरी जाते थे और वो रथ यात्रा करके वापस चल के लौट के आते थे। उनका हर साल का नियम था। बचपन से जा रहे हैं, बोलो, कभी खंड नहीं पड़ा, हर साल जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना पंडरपुर की वारी करते हैं, कभी मिस नहीं करते, कुछ भी हो जाए। बचपन में चालू किया था, अभी 70 साल की उम्र हो गई, सफ़ेद हो गई दाढ़ी, फिर भी वारी कर रहे हैं रोज हर साल। वैसे ही वो लोग थे, नियम से बचपन शुरू किया था, बूढ़ा बूढ़े हो गए थे फिर भी चल रहा था उनका। अचानक एक दिन जगदीश गांगुली को कुछ बीमारी हो गई और वो बीमारी में अंधे हो गए। होता है कभी, वैसे बुखार आता है किसी को, कहीं अंधा हो गया। तो साथी लोग क्या बोले, अरे अभी हमको आपको लेके जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि आप तो अंधे हो गए, कि गिर गए किधर, कुछ हो गया तो आपका देखभाल कौन करेगा, उधर जंगल में से बारिश में से निकलेंगे हम लोग, पता नहीं क्या होगा। तो बहुत बुरा लगा उसको कि भरी मैं अभी, सही बात है, मैं अभी अंधा हो गया, एक वजन हो गया, बोझ हो गया उनके ऊपर। पहले अपने आप चलता था, अभी इनको हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा लैट्रिन में, इधर उधर खाने पीने के लिए, सोने के लिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो पता नहीं संकट आएगा तो कैसे सामना करेगा। तो मान गया, फिर गया नहीं, बाकी सब लोग चले गए। बड़ा दुखी हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो रात को भगवान स्वप्न में आए, जगन्नाथ जी बोले, चिंता मत करना, कल सुबह अभी तुम मायापुर में हो, सब लोग चले गए जगन्नाथपुरी, तुम अपने गंगा जी में जाना और स्नान करना, उसमें जब डुबकी लगाओगे ना तो सर पे एक बड़ी लकड़ी आके टच करेगी आपको, बड़ी लकड़ी आएगी और स्पर्श करेगी, जैसे वो लकड़ी स्पर्श करेगी आपकी आंखें लौट के आएंगी वापस। वो लकड़ी मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं जगन्नाथ, उस लकड़ी के पेड़ के रूप में मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, आपका स्पर्श होते ही आपकी दृष्टि वापस आएगी, फिर आप उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाना। और मूर्ति बनाने के लिए मेरा आदेश यह है कि एक मूर्तिकार मिले आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रसी, वो ढूंढना पड़ेगा आपको उसको, और उसी के हाथ से मेरी मूर्ति बनवाना। और वो व्यक्ति मना करेगा, क्योंकि बोलेगा मेरे हाथ से खून बह रहा है, पसीना आ रहा है, मतलब पीप निकल रहा है, मेरे हाथ पैर उंगलियां टूट चुकी है, दर्द हो रहा है बहुत, तो मैं ये कैसे बनाऊंगा, ऐसे बोलेगा आपको वो। तब उसको बोलना कि भगवान ने मुझे बताया है कि जब तुम मेरी मूर्ति बनाने का काम शुरू करोगे, वो करते करते ही तुम्हारा कुष्ठ रोग जो है सूख जाएगा पूरा, ठीक हो जाओगे आप। तो वैसे ही होता है, नेक्स्ट डे स्नान करता है, डुबकी लगाते ही सर को वो पत्थर आके चिपकता है, जैसे ही लगता है सर को तो आंखें आ जाती, तुरंत दृष्टि वापस मिल जाती है, फिर वो बहुत खुश हो जाता है कि जैसे स्वप्न में आया था वो सच हो गया। तो वो जो पेड़ का जो बुंदा है लकड़ी का, उसको बाहर निकलता है, एक जगह अच्छी तरह रखता है, इसका प्रकाश निकल रहा है पूरी जगह उस पेड़ से। हाँ, गाँव भर ढूंढता है, अभी तो दृष्टि आ गई ना वापस, गाँव भर सबको ढूंढता है, तो दूर किसी गाँव में एक कोड़ी व्यक्ति जो है ना वो बैठा हुआ है, पूरे उंगलियाँ झड़ चुकी है, नाक झड़ चुका है, जगह जगह पर जख्म है, उसमें से पीप निकल रहा है, कुछ झुंझुनाहट हो रही है, कुछ हाथ पाँव में तकलीफ है। तो बोलता है कि ये मैं तो मूर्तिकार था यहाँ पर, अभी नहीं बनाता है मूर्ति वूर्ति, कुछ छोड़ दिया उसने, अभी बहुत तकलीफ में है। तो उससे जाकर मिलता है, बताता है कि आपको मूर्ति बनानी है, ऐसा ऐसा मुझे भगवान ने आदेश दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकता, मेरे को शक्ति नहीं है, दर्द इतना हो रहा है, मैं उंगली को हिला सकता नहीं हूँ, अपने हाथ से खाना भी खा सकता हूँ, तो वो किला और हथौड़ा लेकर कैसे काम करूँगा मैं। तो कहता है भगवान ने बताया है कि तुम्हारा कुष्ठ रोग अच्छा होने वाला है, आप करो। बहुत देर बाद मान जाता है, और सचमुच में जैसे ही वो मूर्ति को बनाना शुरू करता है, उसका जख्म धीरे 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 खत्म हो जाता है, और जैसे ही मूर्ति तैयार हो जाती है जगन्नाथ जी की, तो वो पूर्णतः ठीक हो जाता है अपने रोग से। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर भगवान के आदेश के अनुसार वो जगन्नाथ जी की एक ही मूर्ति स्थापन करते हैं। फिर दोबारा उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं अभी नीम के दो बड़े वृक्ष निकालना और मेरे भैया और बहन का भी मूर्ति बनाना, बलराम और सुभद्रा का। फिर वो उसी अच्छे हो गए कोड़ी व्यक्ति से, कुष्ठ रोगी से, दोनों मूर्तियां बना लेता है। और आज वो दोनों मूर्तियां राजापुर में, यानी कि मायापुर के सीमांत द्वीप में अभी तक विराजमान है। बहुत सुंदर अद्भुत मूर्ति है वो जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और चक्र भगवान की, बहुत चमत्कारिक मूर्ति है वो, बहुत जागृत देवस्थान है वो। और वो तो था 700वीं सदी में ये सब निर्माण हुआ था उसका। तो फिर जगदीश गांगुली ने बड़े प्रेम से अपने जीवन में सेवा किया उसका, कुछ समय उसके बच्चों ने सेवा किया, उसके बाद में सेवा जो है धीरे 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 नष्ट हो गए। जगन्नाथ जी निग्लेक्ट हो गए, फिर वो मंदिर भी नष्ट हो गया और जगन्नाथ जी के मूर्ति के ऊपर चींटियों का जाल आ गया, क्या कहते हैं उसको आप लोग, मुंगेन से वारूढ़ पैदा हो गया और कई साल वैसे ही पड़ा रहा वो। तो एक दिन ऐसे कुछ लोग जा रहे थे मुसलमान लोग, उनको वो जंगल की झाड़ी में से आवाज आने लगा, हे मुझे निकालो, मुझे प्यास लग रही है, मुझे निकालो। तो डर गए वो लोग, कहाँ से आवाज आ रही है, कोई दिखाई नहीं पड़ता इधर। तो भाग के हिंदू पंडितों के पास में आए, वो बोले कुछ आवाज आ रही है, आप जरा जाके देखो। तो कहाँ से आ रही है, तो जाके जंगल में जाके देखा तो फिर आवाज आई, मुझे प्यास लग रही है, मुझे निकालो। तो हिंदू लोग समझ गए, पंडित लोग, कि भगवान की कोई इच्छा है। तो उन्होंने ना कुल्हाड़ी वगैरह लेके बड़े हल्के हल्के से वो झाड़ी को काटना शुरू किया और धीरे धीरे काटे तो बहुत चींटियों का बड़ा ऐसा एक जाल दिखाई पड़ा, उसको भी धीरे धीरे निकाला उन्होंने। उसके अंदर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और भगवान चक्र की बुरी मूर्ति जो है, इतना सारा चींटी चढ़ने के बाद भी एकदम ऐसे के वैसे ही सेम, ऐसा नहीं कोई खा चुका है मूर्ति के भाग निकल चुके हैं, ऐसा नहीं, एकदम जैसे नई मूर्ति है ऐसे। तो उसको निकाल के फिर मंदिर में स्थापन किया गया, फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू हो गया, वो भी कुछ 200 साल पहले की बात है। फिर वापस पूजा अर्चना शुरू हो गई तो फिर वो ढीली हो गई, फिर कम हो गई। तभी वो पुजारी ने सोचा, उस समय के पुजारी ने, कि हमारा मंदिर जो इस्कॉन का है ना, ये अभी अभी की बात है, 50-60 साल के पहले की बात है, तभी ये सेवा बहुत कमजोर हो गई उनकी। तब हमारा नया नया मंदिर इस्कॉन का बना था, राधा माधव जी वहाँ पर स्थापित हो गए थे, तो वहाँ के पुजारी हमारे इस्कॉन मंदिर में आए और उन्होंने कहा कि हमको ये सेवा अभी नहीं हो रही है, हमारे से जम नहीं रहा है, आप लोग ले लो ये मंदिर अपने कब्जे में और सेवा करो उनकी। तो हमारे इस्कॉन में मीटिंग हुई और राजी हो गए, ले लेंगे उसको। लेकिन अभी तक पेपर वर्क नहीं हुआ था एग्रीमेंट कि कायदे से पूरा मंदिर आपके कब्जे में दे रहे हैं और आप सेवा कर सकते हो, आपको सेवा का अधिकार दिया है, ऐसा पेपर साइन नहीं हुए थे। तो हमारे एक महाराज जी थे जयपता का महाराज, जो यहाँ पर भी रहे 2.5 साल, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट पूरा होने दो फिर सेवा चालू करेंगे। उतने में क्या हुआ, एक दिन रात में पहले वाले पुजारी, अभी तक हमारे पुजारी गए नहीं वहाँ पर, पहले वाले पुजारी की रात में स्वप्न आया और जगन्नाथ जी बड़े नाराज थे उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं अभी। बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोलते आप लोग तो खाना ठीक से खिलाते नहीं हो, वो इस्कॉन के मंदिर में अच्छा भोग मिलता है, हम जा रहे हैं वहाँ पर छोड़ के। तो नींद से जगा ना वो, तो उसको बहुत अच्छा लगा नहीं सुन के, तो भाग के मंदिर गया, स्नान वान करके मंदिर खोला तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और चक्र चारों जन गायब, मंदिर के जगह पर कोई नहीं, जहाँ पर भगवान थे नहीं है। तो बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा, मंदिर के बाहर भाग भाग के पुकारने लगा, रहे आ जाओ भगवान गायब हो गए, किधर है देखो, ढूंढो सबको। तो वो आगे भाग भाग के गए जंगल में, तो जंगल में एक जगह पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, चक्र जो है वो चल रहे हैं, वो चल के जा रहे हैं इस्कॉन के मंदिर की ओर। वो बोल रहे हैं कि हमने आपको कहा था कि हम जा रहे हैं हम अभी। तो जाके पांव पे गिरे उनके, बोले मत जाओ भगवान। तो ये खबर जो है वो इस्कॉन में पहुंच गई कि ऐसा सपन हुआ ऐसा। तुरंत जयपिता के मैंने ऑर्डर दिया, अरे एग्रीमेंट बाद में करो, पहले उधर जाके सेवा करना आरंभ करो, भगवान साक्षात पुकार रहे हैं, भूख लग रही है, हमारा भाग्य है ये। तो एग्रीमेंट बहुत दिन के बाद में हुआ, लेकिन तुरंत इस्कॉन के पुजारी भाग भाग के आए, तुरंत किचन सजाया, उधर तुरंत भगवान को भोग लगाना आरंभ कर दिया। ऐसे भगवान है वो सबने दर्शन किया उधर, आप लोगों ने देखा ना कैसा चेहरा है उनका, शाइनिंग एकदम। फिर जब इस्कॉन ने उस मंदिर को लिया तो उसका जीर्णोद्धार किया ना, वो मंदिर थोड़ा नया बनवाया, थोड़ा सा हॉल बनाया उसके लिए। तो वो ना जब वो मंदिर नया बन रहा था तो वो एक कामगार था उधर, कामगार, वो रोज एक टाइल चोरी करता था और साइकिल से अपने घर में ले जाता था, रोज एक टाइल, भिखारी था, क्या बोलते, मेसन था वो, गवंडी। तो बहुत टाइल इकट्ठा किए। एक दिन स्वप्न में बलराम जी आए उसके और बहुत पीटा उसको स्वप्न में, बोले मेरे मंदिर का तुम ईंट चोरी करते हो, वापस करो। तो अगले दिन ना रोज साइकिल में आके एक एक टाइल लेके जाता था, नेक्स्ट डे टेम्पो लेके आया, पूरा टाइल वापस लेके आया वापस कर दिया। बोला इन्होंने सपने में आके मुझे बहुत मारा है, मुझे माफ करना भगवान, बोला। दूसरी बार दो रिक्शा वाले आए, ऐसा ही यात्रियों को लेकर आए, इसमें एक मुसलमान था एक हिंदू था। तो हिंदू अपने फ्रेंड को बोला, रुक जरा मैं दर्शन करके आता हूँ। अंदर गया, दर्शन किया, तो पुजारी ने उसको जगन्नाथ का महाप्रसाद दिया। तो उसने बोला फ्रेंड को भी बांट के खाएंगे। तो बाहर गया और मुसलमान को भी दिया और खुद आधा खाया। तो मुसलमान ने क्या किया, वो देखा अरे ये हम लोग मूर्ति का प्रसाद नहीं खाते, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया उसको। बोले हमारे धर्म में हम लोग मूर्ति को अर्पण किया हुआ खाना नहीं खाते, मना कर दिया हमको। तो वो प्रसाद जो दिया था उसको उसने कचरा के डब्बा में फेंक दिया। तो उसको रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा आए, जगन्नाथ जी नहीं आए, बलदेव आए पहले, और बलदेव ने उसको खूब पीटा। बोलते मेरे भाई का प्रसाद फेंकते हो, क्या समझते हो अपने आप को, ऐसा करके गाल पे बराबर उसको मारा। सुभद्रा जी आई, बोले मारो मारो उसको, और मारो और मारो। तो उसके बाद जगन्नाथ जी आए स्वप्न में, बोले मत मारो मर जाएगा बेचारा, मत मारो छोड़ो उसको, समझ गया अभी वो, और स्वप्न समाप्त हो गया। जब जग गया ना सुबह, तो ऐसे गाल सूजे हुए थे उसके, जैसे कोई मार खाया रहता ना भक्ति, ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहा है वो। सीधा जगन्नाथ के मंदिर में आया और इशारे से बोला मुझे इनका प्रसाद दो, मुझे खाना है। तो बुझा रहे उसको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, फिर खाया उसने। ऐसे अद्भुत कहानियां हैं, अभी अभी की कहानी है, अभी पुरानी कहानी नहीं है, अभी रामायण में ऐसा नहीं था, वो अभी की कहानी है। फिर एक दिन ना दोपहर के समय पे जब मंदिर खुला तो लोग बहुत कम रहते, दोपहर को, दोपहर में बंद होता तो भी कम रहते हैं, जब 4 बजे खुलता है तभी भी कम रहते हैं, फिर 6 बजे संध्या आरती में लोग आ जाते हैं, बहुत लोग, ऐसे गर्दी होती है। तो एक फैमिली आई वहां पर, एक लड़की, एक माता और एक पिता। मंदिर ऐसा ही जस्ट खुला था और पुजारी खोल के अपने आरती करके कहीं चला गया था अभी ऐसा ही। तो वो लड़की छोटी सी क्या देखती है, दर्शन करती है, देखती है अरे सुभद्रा के गले में बहुत अच्छा अच्छा एक नेकलेस पहना हुआ है, उसको लगता है कि ये मुझे चाहिए, बहुत अच्छा है। तो देखा उसने इधर उधर कोई नहीं है, तो आगे गई वो और सुभद्रा का गले में हाथ डाल के वो नेकलेस निकालने वाली थी, तो बलदेव ने उसको एक झापड़ लगाया कान के नीचे। तो वो बहुत रोने लगी, पापा को बोले पापा मुझे उसने मारा। बलदेव तो मूर्ति है, वो कैसे मारेगी आपको। अरे नहीं, उसने मुझे एक हाथ से मारा, देखो इधर देखो 5 उंगली आई है। वो देखा तो हाँ 5 उंगली किधर है। तो बोलते उसको तो हाथ उंगली नहीं है, देखो किधर उंगली है क्या। बोलते नहीं, जब मारा तभी था। तो तूने क्या किया, वो मुझे गले का हार अच्छा लगा, मैं लेने को गई थी। अरे नहीं, वो भगवान है, उसको लेना नहीं चाहिए ऐसे, तो बेचारी छोटी बच्ची थी, ऐसा जोर से नहीं मारा था, लेकिन मारा जरूर उसको। मतलब क्या हुआ, भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर। अरे जो जिसको मूर्ति लगती लकड़ी वाली, तो साक्षात दर्शन दिया भगवान ने उसको प्रेम से एकदम। वो मुसलमान हो हिंदू, उसको मारा नहीं उन्होंने, पर कृपा किया। हाँ, हम लोग तो इच्छा करेंगे हमारे सपने में भी आओ, हमको दर्शन दो, दूर दूर जाके दर्शन करते आपका, हमको भी सपने में दर्शन दो आके। लेकिन वो उनको दर्शन दिया उन्होंने। और कई कहानियां ऐसी है उनकी, उनका किताब है पूरा राजापुर जगन्नाथ, सारी कहानियां उसकी, ऐसा मंदिर है वो। और वो किधर है, मायापुर के बीच में है, सीमांत द्वीप में है, यहाँ पर पार्वती देवी ने तपस्या किया था और गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिया था उनको। वो द्वीप के अंदर ये जगन्नाथ जी गंगा में से प्रकट हुए थे, वैसे ही जमुना में जगन्नाथ घाट है वृंदावन में, एकदम कोने में जब परिक्रमा मुड़ती है ना ऐसे गोल परिक्रमा रास्ता, वो परिक्रमा रास्ते मुड़ने के समय वहाँ जगन्नाथ घाट है। वहाँ पर जगन्नाथ घाट के जमुना नदी में वो लकड़ी घूमते घूमते आई थी और भक्त ने उसको प्राप्त किया था, फिर उसकी मूर्ति बनाकर उधर अभी स्थापित की गई है जगन्नाथ घाट में। तो वो जगन्नाथ घाट जो है वो वृंदावन की जगन्नाथपुरी मानी जाती है, ऐसा चमत्कार है। तो सब अद्भुत चीज़ें हैं, जिसको विश्वास है उसके लिए सब कुछ है, उसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए क्या है, लकड़ी की मूर्ति, बच्चों की कहानी बताते हैं और अपने आप को रिझा लेते हैं, सब बकवास की बातें हैं। लेकिन जो लोग वहाँ जाकर अनुभव करते हैं वो कभी भूल नहीं पाते हैं, जिन्होंने साक्षात अनुभव किया है। आप बोलेंगे कि अरे जब प्यास लगती है तो पानी पीने पर बड़ा आनंद आता है, अरे क्या बकवास बातें हैं, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया और आपको आनंद आया, तो आपको और कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं, प्रमाण की, कोई धर्म की ज़रूरत नहीं आपको, आपने खुद अनुभव किया है उसको। तो भक्त का जीवन होता है तो अनुभव का जीवन होता है। अब जगह जाते हैं सब, जब तक घूमने जाते हैं हम लोग, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, सब जगह मूर्तियों का दर्शन करते हैं, कोई मूर्ति हिलती है क्या उधर, क्या बात करती है आपसे, कुछ क्या इशारा करती है आपको, कुछ करती है क्या, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन फिर भी आप देखो, बिना इन्विटेशन के 1 करोड़ लोग वहाँ पहुँच रहे ना, मतलब कुछ तो है कि नहीं वहां पर, सब तो लोग पागल तो नहीं है, दो चार लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ आदमी जब पहुंचता है वहां पर, श्रद्धालु व्यक्ति कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है ना वहां पर। फिर अब हमारी यात्रा जगन्नाथपुरी में गई थी 2-3 साल पहले, हाँ, दो चीज देखकर सब लोग इतने अद्भुत अद्भुत अनुभव से एकदम क्या कहते हैं उसको, भाव विभोर हो गए थे। क्या दो चीज थी वो? एक जगन्नाथ का दर्शन, हमने 20-20 का बैच बनाया था, क्योंकि भीड़ में करने से फायदा नहीं है, सबको अच्छा दर्शन मिलना चाहिए, इसलिए पंडा जी को बताया था कि दिन भर 20-20 लोग जाएंगे, 1 घंटा का समय होगा उनके लिए, पहुंच जाएंगे अंदर 1 घंटा घूमेंगे, दर्शन करेंगे, लौट के आएंगे, तब दूसरी बैच चढ़ी रहेगी। ऐसा करके दिन भर 200 लोगों को 10 बैच में घुमाया, और हर एक बैच जब दर्शन करके लौट के आए ना, ऐसे एकदम खिला हुआ चेहरा, इतने खुशी से पागल हो गए थे। क्या देख के आए? एक लकड़ी की मूर्ति देख के आए, 3 मूर्ति और 1 चक्र की मूर्ति देख के आए। क्या देखा? लेकिन जो देखा, जो भी देखा, वो देख के एकदम आनंद से विवर होकर लौट के आए, प्रभु जी क्या दर्शन हुआ। देखा खाली लकड़ी की मूर्ति और कुछ नहीं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति नहीं थी, वो भगवान है स्वयं। तो एक सबको अनुभव आया कि इनका दर्शन करना मतलब आनंद के सागर में डूबना है, प्रभु जी दोबारा जाने को मिलेगा क्या, ऐसा पूछ रहे हैं सब लोग। और दूसरी बात, उनका महाप्रसाद, जादू ही जादू थी वो। मैंने ये महाप्रसाद का जब पंडा जी से ऑर्डर किया, वो बोला कि हमारे पास 200 लोग हैं, तो बोलेगा कि ठीक है आपको महाप्रसाद दे देंगे। तो मैंने कहा कब देंगे आप? वो बोले कि दोपहर का जो महाप्रसाद है वो निकलते निकलते 3:30 बजते हैं, तब तक तो आप लंच के लिए वेट कैसे करेंगे, तो हम लोग वो प्रसाद को डिनर में देंगे। तो मैंने कहा प्रभु जी ठंडा हो जाएगा, दोपहर को लगाया भोग, 2 घंटे बाद बाहर निकलेगा, फिर आप डिवाइड करेंगे हमारे लिए, हमारे हिस्सा निकालेंगे और उस ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम लोग उसको 8 बजे खाएंगे, तो ठंडा हो जाएगा वो। ये हमारा दिमाग शहर का दिमाग है ना। तो हमने क्या बोला, हमारे एक आचार्य को वहाँ पर बोला कि वहाँ से शाम को डिनर आएगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप खाली ना एक गर्म सूप बना दो और एक आम का अचार रखो, ताकि ठंडा खाना भी गर्म सूप के साथ में हजम हो जाएगा। और आया प्रसाद, 8 बजे आ गया, तो मैंने देखा अरे इतने छोटे छोटे मटके में लेके आया, 200 लोग है, 200 लोग यहाँ पर, ये तो 150 लोग खा लेंगे उसको, और लगेगा। बोला प्रभु जी चिंता मत करना, और लगेगा तो और लेके आऊँगा मैं, इतना तो समाप्त होने दो। तो उसको पता चला कि मैंने सूप बनवाया है गरम गरम और अचार भी दे रहा हूँ, तो बड़ा गुस्सा आया उस पंडा को। उसने कहा देखो जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है ना महाप्रसाद, उसके साथ में कुछ नहीं खाना चाहिए, वो परिपूर्ण है, वो महाप्रसाद है, वो कम है ये सोच के आपने सूप बनवाया है, ये तुम्हारा भाव गलत है। तो मैंने तुरंत सूप और अचार कैंसिल करवा दिया। फिर हमने बैठने के लिए पट्टी डाल दिया, बोलते नहीं जगन्नाथ जी का प्रसाद जमीन पे बैठ कर खाना होता है, पट्टी को निकाल दिया। फिर मैंने बोला प्रभु जी देखो अभी भी डाउट है मुझे, ये प्रसाद देना पूरा नहीं होगा, इतने इतने मटके में लाया आपने, 200 लोग है, कैसे पूरा होगा? बोला प्रभु चिंता मत करो आप। और क्या बताऊँ आपको, 200 लोग ने दबा दबा के खाया, बार बार पूछ के खाया, उसमें 3-4 सब्जियां थी, 1 दाल थी, 2-4 स्वीट थे, क्या क्या था उसके अंदर, चावल थे कितने प्रकार के, लेकिन सब इतने इतने मटके में थे। और सब लोग ने दोबारा 3 बार 4 बार जाके सेकेंड सर्विस 3 सर्विस खाया। मैंने बोला प्रभु जी आप जितना मांगता है उतना खाओ, सोई संकोच नहीं करो, पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर किया है। और 200 आदमी ने पेट भर के मांग मांग के खाकर भी आधा आधा मर्तन खाना बचा। बोलो और कैसा? मेरा मन में डाउट था कि वो ठंडा हो गया ना, तो पहला ऊपर का जिस 4 लोग को दिया वो ठंडा था, अंदर का चालू हो गया सर्विस करने का, गरम गरम दाल भी गरम, सब्जी भी गरम, अंदर का चावल भी गरम, सबको गरम गरम मिल रहा है, सब लोग एकदम फटाफट फटाफट खा रहे हैं। ये कैसे होता है? बोले जगन्नाथ का चमत्कार है। 1 बजे लगाया हुआ प्रसाद है वैसे रखा है, ऐसा नहीं कि भाई उसको ओवन में रखा था या भट्टी में रखा था गरम रखने के लिए, खाली मटके में ही है वो, थोड़ा ऊपर का ठंडा हो गया, ऊपर से थोड़ा दे दिया, अंदर गरम गरम प्रसाद। अच्छा लगा, एक दिन होगा चलो जब चमत्कार हो गया, रोज यही चमत्कार था, रोज जितना भी लेके आया पाव आधा ऐसा रोज बच गया। फिर क्या करने का उसको, फिर होटल के कर्मचारियों को दे रहे हैं, मैनेजमेंट को दे रहे हैं, बचा हुआ रोड पे बांट रहे हैं। ये दो चीज़ जो है ना, उसका एक स्वाद और ये चमत्कार गरम गरम प्रसाद का, बहुत लेख दो लेख कर हैरान हो गए लोग, ऐसा अनुभव कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो बाकी सब दर्शन किया हमने, बहुत घूमे, कथा वथा किया सब कुछ, लेकिन ये दो चीज़ें थी जगन्नाथ जी की, लोग भूले नहीं अभी उसको, एक दर्शन और एक महाप्रसाद। तो ये सब आपके लिए भी अवेलेबल है, ऐसा समझ समझना कि हमको ही अनुभव प्राप्त हुआ। अभी हम शायद भगवान की इच्छा होगी तो दिसंबर में यात्रा निकालने वाले हैं, उधर भी हमारा टारगेट यही है, जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ प्रसाद, दो चीज़ करना है, उसके बाद बाकी सब जगह घूमेंगे, कथा करेंगे, लेकिन दो चीज़ जो है वो छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह से दिल भर के दर्शन करेंगे। क्योंकि कथा क्या है उसकी, जगन्नाथ जी का महत्व क्या है, जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए ना तब केवल नारद मुनि ने उनको देखा था, और जैसे ही जगन्नाथ जी को नारद मुनि ने देखा ऐसे अवस्था में से गिरे हुए, तो नारद मुनि के हृदय में ऐसा अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ। जो पहले भगवान से प्रेम करते हैं वो, लेकिन आज जो प्रेम का अनुभव हुआ वो पहले से अद्भुत था बहुत। तो उन्होंने वही वरदान मांग लिया भगवान से कि मेरे को आनंद मिला, मैं भी वरदान मांगता हूं कि ऐसा ही आपको दर्शन पृथ्वी पर देना है, ताकि जिसको देखकर, केवल देखकर ही लोगों के मन में आपके लिए प्रेम और भक्ति का अनुभव होगा। जो भी दर्शन करेगा वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा और जीवन के अंत में भगवान के धाम में चला जाएगा, ऐसा वरदान दो। तो नारद मुनि ने, मुनि को भगवान ने वरदान दे दिया, और उसी के उपलक्ष्य में ये जगन्नाथ जी जो है जगन्नाथपुरी में प्रकट हो गए। तो दो ही आशीर्वाद है वहां पर, एक खाली करना है अपने को, यहां से टिकट निकाल के वहां पहुंच जाना है बस, उनका दर्शन करना है, प्रार्थना करना है, और दूसरा उनका प्रसाद पाना है। जो दर्शन करेगा प्रसाद पाएगा वो दुनिया में दुख से मुक्त हो जाएगा और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेगा, यही वरदान है उधर। तो ऐसे सुंदर जगह पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु का 18 साल रहे वहां पर वो चैतन्य महाप्रभु, और 18 साल की सारी लीला वहां पर की। तो उधर बहुत सारे स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया हुआ है, उनके भक्तों ने, उन्होंने समुद्र में लीला है, कहां कहां लीला है। तो इतना पवित्र स्थान है वो, क्यों बनाया भगवान ने, केवल तुम और हम जैसे लोग जीवन में एक बार वहां पहुंचना है, कर्जा निकाल के, छुट्टी निकाल के, जो भी आपको करना है वो दर्शन करके आना है बस, वो एक बार कर दिया आपने। तो ऐसा कहते हैं कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उस समय आपके सामने वो दर्शन आएगा जो आपने किया है उधर। रथ यात्रा का महत्व क्या है, रथ यात्रा का 5 महत्व है, 5 हो सके तो लिख लेना, वहां तो याद रखना 5। रथ में बैठे हुए भगवान को देखना है नंबर 1। नंबर 2, रथ में बैठे हुए भगवान को देखते समय हरे कृष्णा देखते समय हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, दूसरा हो गया। तीसरा, उसी भगवान को जमीन पर मत्था टेक के दर्शन करना है, अभी हाथ से क्या ना ऐसे खड़े खड़े, फिर झुक के अपना सर उनको देख के जमीन पर लगाना है, 3 हो गए। फिर चौथा यह है कि जिस रस्सी से उनके रथ को खींचा जा रहा है वो रस्सी को हाथ लगाना, स्पर्श करना, प्रणाम करना, और 5वां है उस रस्सी को पकड़ के रथ को खींचना। ये 5 में से एक कार्य आप करेंगे, या चारों करेंगे, या 5ों करेंगे, या 2 करेंगे, जितना भी आपको हो सके करेंगे, तो ये 5 कार्य करने वाला व्यक्ति जो है इस जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेगा। उसके अंतिम क्षण में उसको, उसने क्या क्या किया है इसमें से, वो सब दिखाई पड़ेगा उसको। जिस भगवान को रथ में बैठे हुए देखा है वो जो दृश्य है उसको दोबारा दिखाई पड़ेगा, उसकी याद आएगी ना, जो देख रहा है, जो दर्शन भगवान दे रहे हैं मरने के समय, भगवान दर्शन देंगे एंड के समय, वो रज्जु को हाथ लगाए उसका दर्शन देंगे, और वही देखते हुए आपका ध्यान तो हो जाएगा, कितनी भाग्य की बात है। आपको अभी क्या करना है, अभी आपकी आँखें अच्छी हैं, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस जाके भगवान के रथ को छूना है, बस दर्शन करना है, प्रणाम करना है, जमीन पर मत्था टेकना है। कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं ना आपका, बहुत आसान काम है। बुढ़ा हो गया तो फिर बाद में अलग बात है, झुकने से झुक सकता नहीं, अभी तो जवान आदमी है। झुको, प्रणाम करो भगवान को, प्रार्थना करो, रथ में बैठे भगवान को देखकर प्रार्थना करो। चाहे भीड़ होंगी, लेकिन अगर शक्ति नहीं है भीड़ में घुसने की, वो रस्सी को हाथ लगाने की, तो दूर से भगवान को झुककर प्रणाम करो। वर्षा हो, कुछ भी हो, झुकना, प्रणाम करना उनको, और प्रार्थना करना कि आपकी भक्ति दो, फिर आपके जीवन में चमत्कार आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको सिंहस्थ कुंभ मेला की बधाई हो, अधिक मास की बधाई हो, रथ यात्रा की बधाई हो, पंडरपुर की एकादशी की बधाई हो। हाँ, आनंद ही आनंद है जीवन में, इसलिए भारतवर्ष में किसी को मन का दुख ज़्यादा होता नहीं है। कैसा होगा ये उत्सव के बाद दूसरा उत्सव, उसके बाद तीसरा उत्सव, एन्जॉयमेंट चलते रहता है फेस्टिवल का। उसके बाद गणपति आएगा, उसके बाद में फिर गोकुलाष्टमी आएगी, उसके बाद में राखीबंधन आएगा, उसके बाद में गोकुलाष्टमी, फिर राधाष्टमी, फिर मंदिर का उद्घाटन यहाँ का, फिर उधर के मंदिर का उद्घाटन, फिर ये, फिर वो, फिर दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, चालू है ये सब लाइन से। बीच में मन को टेंशन लेने के लिए फुर्सत किधर है? एक के बाद उत्सव आने वाला है, इसलिए भारतवर्ष भाग्यवान देश है। नहीं तो उधर सऊदी अरब में कैसा है, एक रमजान एक बकरीद बस, उसके बाद में कुछ नहीं। यूरोप में कैसा है, एक साल में एक ही फेस्टिवल है, वो कौन सा है? क्रिसमस। एक साल में एक फेस्टिवल, बाकी कुछ फेस्टिवल नहीं है। भारत में आओ, हर महीने में फेस्टिवल, फिर उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब भाग लेते हैं, है ना। दिवाली में सब फटाखा फोड़ते कि नहीं? सब लोग आनंद लेते हैं, रामलीला देखते हैं, सब मजा करते हैं। सबको पता है राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, अल्लाह कौन, सब मालूम है। इधर देवी का नवरात्रि है, लाइन से लगा रहता है, आनंद ही आनंद। हमारा देश बहुत भाग्यवान देश है, भगवान का देश है। सब धर्म के लोग यहाँ पर अपना अपना भगवान की विधि से पूजा करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं दुनिया में जो सर्व धर्म के लोग रहते हैं, अपना अपना पूजा पाठ करते हैं, आनंद से रहते हैं। इतनी नदियाँ हैं, स्नान करते हैं उसके अंदर। हाँ, शिरडी में देखो कोई भेदभाव है क्या? सब धर्म के लोग पहुँचते हैं उधर, अपना अपना मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि अभी सिंहस्थ मेला में 1 करोड़ लोग आएंगे ना, 25% लोग सिंगापुर और उधर शिरडी पहुँचने वाले हैं। उधर भी बड़ी व्यवस्था हो गई है लोगों की आने जाने की और दर्शन की, क्योंकि इतने साल 12 साल के बाद में इतना मौका आएगा ना, ये लोग जनता आएगी वहाँ पर दर्शन करने के लिए। आप भी जाओ दर्शन करो भगवान का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।